अर्थे इंद्रिय विषय ही निश्चय ही अविद्यमाने अनुपस्थिति में अपि यद्यपि संस्कृति भौतिक संसार न कभी नहीं निवर्तते रुक जाता है। ध्यायतः ध्यान करते हुए विषयान इंद्रिय विषयों के बारे में अस्य जीव का स्वप्ने स्वप्न में अनर्थ अवांछित वस्तुओं का आगम प्राकट्य यथा जिस प्रकार अनुवाद। जब जीव स्वप्न देखता है तो वास्तव में इंद्रिय विषय उपस्थित नहीं रहते, किंतु इंद्रिय विषयों के साथ मनुष्य का संपर्क होने से वे प्रकट होते हैं। इसी प्रकार अविकसित इंद्रियों वाले जीव का भौतिक रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, भले ही वह इंद्रिय विषयों के संपर्क में न रहा। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि बच्चा अबोध निर्दोष है, इसलिए वह पूर्णतया शुद्ध है, किंतु वास्तव में तथ्य यह नहीं है। कर्मों के प्रभाव जो कि सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहते हैं, तीन क्रमागत अवस्थाओं बीज कुटस्थ तथा फलोन्मुख में प्रकट होते हैं। प्रकट अवस्था प्रारब्ध पहले से कार्यशील कहलाती है। चेतन अथवा अचेतन अवस्था में सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर की क्रियाएं भले ही प्रकट न हो, किंतु ऐसी अवस्थाएं मुक्त नहीं कही जा सकती। शिशु भले ही अबोध हो, किंतु उसे मुक्तात्मा नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक वस्तु सुरक्षित रहती हैं और यथासमय प्रकट होती हैं। सूक्ष्म शरीर में किसी प्रकार के प्रकट के अभाव में भी इंद्रिय भोग के विषय कार्य कर सकते हैं। हमने ऊपर स्वप्न दोष का उल्लेख किया है, जिसमें भौतिक इंद्रियां भौतिक पदार्थों के प्रकट न रहने पर भी कार्य करती हैं। भले ही सूक्ष्म शरीर में प्रकृति के तीनों गुण प्रकट न हो, किंतु इसका दूषण कलमस सुरक्षित रहता है, यथासमय प्रकट होता है। यदि सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की प्रक्रियाएं नहीं भी प्रकट हो, तो भी मनुष्य भौतिक परिस्थितियों से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए यह कहना गलत है कि शिशु मुक्त आत्मा के समान होता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यानामि गौरतुसे नमः। नीलांबुज श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपित वाम भागम् पाणो महाशायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं महाराज प्राचीन वरहित का इतिहास, नारद जी के द्वारा उपदेशित हैं प्राचीन वरहित। आप लोग सुनते आ रहे होंगे किस तरह से महाराज प्राचीन वरहित कर्मकांड में लगे हुए थे, यज्ञ कर रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि यज्ञ करेंगे और यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे संसार के दुखों से। लेकिन नारद जी जो आगे भी भक्ति मार्ग का जो प्रवचन दिए हैं उसमें बताए हैं कि कर्म करने से व्यक्ति की पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं होगी। एक व्यक्ति कर्म करता है इंद्रिय सुख के लिए और फिर दूसरा कर्म करता है उससे मुक्त होने के लिए। तो कर्म से कर्म को धोया नहीं जा सकता। इस बात से अंत में नारद जी निष्कर्ष देते हैं कि भगवान की जो भक्ति है वही एकमात्र जीव के लिए परम कल्याण परम साधन है जिससे पूर्णतया मुक्त हो सकता है जीव। यहां पर इस श्लोक में जीव की जो अवस्था है इंद्रिय विषय भोग, क्योंकि जब हम लोग सोचते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्य सुपजात, जब ध्यान करते हैं किसी विषय के बारे में तो उसका संग करने की इच्छा होती है ना। कुछ भी यदि हम ध्यान करते हैं सोचते हैं मन में तो ये भी सोचते हैं कि वो हमको मिल जाता। भगवान गीता में बड़ा सुंदर बताया है इसको, सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश है वो मिल भी जाता है कभी कभी। तो मिलता है तो ऐसी नहीं कि जो इच्छा हमारी थी जिस वस्तु की इच्छा थी वो मिल गया तो हमारी इच्छा समाप्त हो गई, ऐसी बात नहीं है। संजात संजायते काम काम क्रोध विजात, जो उस वस्तु का मिलन होता है इस जीव से तो उसके अंदर काम, उसको भोगने की इच्छा होती है, उसको भोगता है। जैसे कोई व्यक्ति इच्छा करता है कि हमारे पास एक बढ़िया सा टीवी होता, इच्छा किया टीवी होगा, उसके लिए जो भी उद्यम है करता है, उसके लिए जो प्रयास है करता है, उपाय करता है। लेकिन जब टीवी उसके घर में आ जाता है मिल जाता है तो उसको भोगता है, स्टार्ट करके देखता है उसको, और काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण, उस रजोगुणी हो जाता है मन, तो वो जो भोगते 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 और की इच्छा जागृत रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है। अलग अलग चैनल बदलते हैं लोग, देखिए हम देखते रहते, कभी समाप्त नहीं होती है। सोचते हैं इस पे अच्छा आएगा, इस पे अच्छा आएगा, इस पे आकर के पूरा दिन निकाल लेते हैं। इच्छाएं कभी कम नहीं होती है, लेकिन यदि कभी वो खराब हो जाता है बिगड़ गया तो उनके मन में क्रोध आता है, अरे कैसे हो गया ऐसा, काम क्रोध मोह ये सब उत्पन्न होता है। यहां बताते हैं कि जीव का जो सुप्त अवस्था है जिसमें ऐसा लगता है कि उसके इंद्रिय में किसी भी प्रकार की भोग करने की इच्छा नहीं है, लेकिन जब उसको किसी भोग का संसर्ग होता है तो तुरंत तो जागृत हो जाती है। उदाहरण दिया गया है बच्चे का, जब बच्चा छोटा रहता है तो सिर्फ अन्नमय रहता है, उसको खाना चाहिए और किसी प्रकार की भोग की उसे इच्छा नहीं रहती है, सिर्फ उसको खाना है। लेकिन जैसे वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर ज्ञान होता है, जानना चाहता है माता पिता से और चाहे मित्रों से स्कूल में कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ पूछता है, ज्ञान अर्जन करता है। आगे बढ़ा। फिर धीरे 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 वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसका शरीर बड़ा हो जाता है, इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, जान जाता है सब कुछ, तो उसके अंदर काम आ जाता है, काम आ जाता है, इच्छा आ जाती है, बलवती हो जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे भी लोग कहते हैं कि बच्चा जो है पूर्ण शुद्ध है, लेकिन उसको माना नहीं जा सकता है पूर्ण शुद्ध। जीव जब सुप्त अवस्था में रहता है तो इंद्रियां एकदम शिथिल रहते हैं, कोई चीज भोग नहीं, लेकिन वही जीव जब शरीर ग्रहण करता है तो शरीर के अनुसार उस शरीर में जो भोग मिलते हैं उनको भोगने की इच्छा करता है। जय श्री गौर नित्य राधारास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, उसको भोगना चाहता है। वो अवस्था हम लोगों की है, हम लोग इस संसार को भोगना चाहते हैं। प्रत्येक जीव संसार पे आधिपत्य जमाना चाहता है, प्रत्येक जीव संसार में सुखी होना चाहता है, कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है। जो पांच ज्ञान इंद्रिय हैं, पांच कर्म इंद्रिय हैं, तो संसार में जीव इसे केवल संसारिक सुख भोगने का प्रयास करता है, केवल। भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है, परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि एक तो जीव कर्म करता है, इस बात में कर्म करता है, और उस कर्म को खत्म करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, धोने के लिए दूसरा कर्म करता है। एक तो इंद्रिय भोग के लिए कर्म करता है, दूसरा पुण्य कर्म करता है, दान करेगा, ध्यान करेगा, यज्ञ करेगा, तपस्या, सब पुण्य कर्म के अंदर आते हैं। तो क्या इसे शुद्धि होगी? सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हां होगी। तब परीक्षित महाराज ने विचार किया कि नहीं, मैं तो इसको नहीं समझता हूं कि इसे पूर्ण शुद्धि होगी, कोई दूसरा उपाय बताइए। तपसा ब्रह्मचर्य न समय न दमे न च। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि नहीं, तो तपस्या है, ब्रह्मचर्य का पालन है, यम नियम, बहुत सारा उपाय है जिससे जीव की शुद्धि हो सकती है, उस पर भी विचार किए। परीक्षित महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, ये भी ऐसा लगता नहीं है। हम देखते हैं कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अजामिल की कथा आती है, तो अजामिल तो बहुत बड़ा पंडित था, ज्ञानी था, भक्त था, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, उसका शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन उसका भी पतन हो गया। केवल एक इंद्रिय आंख से उसने देखा और दृष्टि मात्र से उसका पतन हो गया, सब कुछ रुक सा गया, उस पतन हो गया उस। कहते हैं कि नहीं, इससे भी नहीं हो सकता है, पूर्ण शुद्धि नहीं होती। पूर्ण शुद्धि जीव का कैसे होगा? केचित केवलया भक्ति वासुदेव परायण। कैसे होगा कि व्यक्ति कृष्ण परायण हो जाए, केवल कृष्ण भक्ति करे, केवल कृष्ण अगम अगम धुनौति कात्यायन निहाराम यो भास्कर। सुखदेव गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से ये कोहरा है, सूर्य उदय होने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से केवल कृष्ण भक्ति व्यक्ति करेगा तो उसके जितने भी पाप हैं नष्ट हो जाए। किचित केवलया भक्ति वासुदेव परायण, ये बात सब जगह कही गई है, भगवान भी गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कृ। सबसे सुंदर, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरे लिए कर्म करो, ये होता है। यदि व्यक्ति शुद्ध होना चाहता है तो बच्चे के अंदर कोई विकार नहीं रहता है। कभी कभी लोग कहते हैं बच्चा भगवान का रूप है, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि बच्चे के अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं रहता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि नहीं रहता है। भगवान ही सबसे परे हैं, इसीलिए उसकी उपमा कभी कभी दी जाती है। बच्चा भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन एक उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर अगर कुछ खिलौना दीजिए उसको तुरंत लेकर खेलना शुरू कर देगा, आप उसे ले लीजिए तुरंत रोना शुरू कर देगा। उसको भी पता नहीं कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा मित्र है, कौन दोस्त है, जो उसको खिला रहा है पिला रहा है उसी के साथ वो रह रहा है। किसी प्रकार का विकार नहीं है उसके अंदर, और भगवान के अंदर भी इस प्रकार का नहीं। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे जो हैं भगवत रूप होते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहां पर कहते हैं कि उदाहरण देने के बावजूद भी अगर इस प्रकार से देखा जाए तो भी यदि सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की प्रक्रियाएं नहीं भी प्रकट हो तो भी मनुष्य भौतिक परिस्थितियों से मुक्त नहीं हो सकता। भौतिक परिस्थितियां रहती है, आदमी कोई भी जीव खास करके मनुष्य तो कर्म करता है, और जीव और जोनी तो कर्म भोगने के लिए आते हैं। मनुष्य किसी न किसी अवस्था में रह करके कर्म करता है, कोई न कोई अवस्था रहती है, चाहे वो सत्वगुण में हो, रजोगुण में हो या तमोगुण में हो, इन गुणों से परे नहीं हो सकता तो मुक्त कैसे हो। स्वप्न में प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वप्न में जब हम लोग सपना देखते हैं, कोई व्यक्ति सपना तो सबके लिए व्यवस्था की गई है भगवान के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति सपना देखता है, पशु पक्षी भी देखते हैं। हम एक बार एक फिल्म देखे थे इंग्लिश में, उसमें एक भालू था वो भी सपना देखता है, दीना सपना देखता रहा था। ये सत्य है, सपने की जो व्यवस्था है भगवान ने सबके लिए करके देखी। तो स्वप्न में हम सपना देखते हैं लेकिन वस्तुएं उपस्थित नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी जीव अनुभव करता है उसको, उससे बचता नहीं है, मुक्त किधर है। सपने में हम देखते हैं कि रसगुल्ला खा रहे हैं, चाहे कोई हमको मार रहा है, कोई हमको गाली दे रहा है, राजा हो गए, भिखारी बन गए, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सांप काट रहे हैं, बहुत प्रकार के सपना देखता है जी। वस्तुएं न होने के बाद भी उस सुप्त अवस्था में भी जीव सुख दुख का अनुभव करता है, रोता है, चिल्लाता है, मुक्त नहीं है। ये उदाहरण मात्र समझने के लिए दिया जाता है कि भगवान जैसे एक बच्चा के अंदर किसी प्रकार से इच्छा द्वेष नहीं है, उस प्रकार से भगवान में भी है। भगवान इस सृष्टि का रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। तो भगवान जितनी लगन के साथ इस सृष्टि का सृष्टि करते हैं उतने ही लगन के साथ इसका नाश भी करते हैं। आप लोग देखें समुद्र के किनारे कोई बच्चा जो घर बनाता है बालू का घर, ये तो देखी गई बात, जो बालू का घर बनाता है बच्चा तो कितना प्रेम से बनाता है, खूब बढ़िया से उसको बालू निकाल निकाल कर थाप थाप बढ़िया सुंदर घर बनाएगा। उसको यदि आप छुएंगे तो रोता है, अगर आप तोड़ दीजिए तो रोएगा, वो चिल्लाएगा, मारेगा, जो भी उसको। लेकिन जब तोड़ना होगा उसको स्वयं, तो जितना प्रेम से वो बनाता है उतना ही प्रेम से उसको तोड़ता भी है। बच्चा जितना प्रेम से उस घर को बनाता है, उसकी रक्षा करता है और खूब पैर से उसमें नाचता है, तोड़ता है उसको, बनाने में जितना आनंद आता है उसको, तोड़ने में उतना ही आनंद आता है। इसीलिए भगवान को कहा गया कि भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और इसका संहार भी करते हैं, फिर भी वे इससे मुक्त हैं, अलग है, परे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव को फर्क पड़ता है, भगवान को नहीं पड़ता। जीव अनुभव करता है सुख का, दुख का, कभी रोता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति षड विकार जो बताया गया भागवत में ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा, नारद, शिव और समस्त देवता भगवान की स्तुति करते हैं, उसमें बताए हैं षड विकार। ये शरीर में षड विकार है, या इस सृष्टि में संसार में छह विकार। इस संसार को एक वृक्ष के रूप में बताया गया है, उसमें दो फल बताए। प्रत्येक जीव उस फल को खा रहा है, एक सुख और दूसरा दुख। इसी संसार में, इसी शहर में कितने लोग सुख का अनुभव करते हैं, कितने लोग दुख। अभी कल देखिए, कल यहां शादियां थी दो तीन, कितने लोग खूब नाच रहे थे, 10-11 बजे रात तक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं शमशान भी गए होंगे, शमशान में लेके गए अपने परिवार वालों, तो वहां तो कोई आनंद नहीं, दुखी है। कोई बारात लेके जा रहा है तो कोई वो डेड बॉडी लेके जा रहा है। एक सुख का अनुभव करता है और दूसरा व्यक्ति दुख का अनुभव करता है इस संसार में। अथवा एक ही व्यक्ति कभी सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है। इस संसार के विकार है, मुक्त नहीं हो सकते हैं हम लोग। भगवान निसे परे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे दिशसि न प्रिय। मैं तो सबके ऊपर समान हूं। एक जगह ये प्रश्न भी आया है भागवत में, परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान जब सबके ऊपर समान है फिर भी उनके कर्मों में भेद देखा जाता है। भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों का वध कर देते हैं, ये देखा गया है ना। भगवान भी कहते हैं गीता में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। मैं साधुओं का त्राण करने के लिए आता हूं और दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूं। एक व्यक्ति का रक्षा करते हैं भगवान और दूसरे व्यक्ति का नाश करते हैं। नाश करना, नाश करने का मतलब क्या? जीव जो है, जीव आत्मा, आत्मा का तो कभी नाश होता नहीं। फिर नाश क्या होता है? ननम चिदंती शस्त्राणी ननम दहति पावक, ये तो कभी नाश नहीं हो सकता है। अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के नष्ट होने के बाद भी न हन्यते, जो नष्ट नहीं होता है वो आत्मा। विनाश आया जो दुष्कृतम, भगवान कहते उनकी जो कृति है दुष्कृति, भगवान उसका नाश करते हैं, सुकृति बना देते हैं, अपने धाम में भेज देते हैं भगवान असुरों को। भेद दिखता है लेकिन वास्तव में भेद नहीं है, ये भगवान का बहुत बड़ा कृपा है। जीवन भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये सब मुक्त होने का उपाय है। यहां पर जो बताया जा रहा है कि अविकसित इंद्रियों से व्यक्ति भोगों की इच्छा नहीं करता है, लेकिन जैसे उसकी इंद्रियां विकसित हो जाती है तो करने लगता है। इसके पहले वाले श्लोक में कल परसों आप लोग सुने होंगे कि बच्चा जब छोटा रहता है तो उसकी ज्यादा इच्छा नहीं होती, खाना सोना ही सब इच्छा रहती है। वो भी इच्छा जाहिर नहीं कर पाता है, प्रकट नहीं कर पाता है, सुप्त रहता है। माता पिता अनुमान लगाकर उसकी सेवा करते हैं, बच्चा रोने लगा कहां शायद भूखा होगा तो खा लेता है, चुप हो जाता है। माता पिता को भी पता नहीं है कि बच्चा क्यों रोता है, एक आइडिया लगाते हैं मन में, अनुमान लगाते हैं, हाँ इसको 4 घंटे पहले खिलाए थे, अब इसको भूख लगा है, रो रहा है, खाएगा, और खाता है, चुपचाप सो जाता है। लेकिन वो जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मांगने लगता है, मुझे रोटी दो, भात दो, खाना दो, ये दो, वो दो, मांगने लगता है। धीरे 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 और बड़ा हो जाता है तो दूसरे दूसरे अन्य वस्तुओं की इच्छा करने लगता है। इस प्रकार से इच्छाएं बढ़ती जाती बढ़ती जाती, और इच्छाओं का तो कभी अंत नहीं है, कभी अंत नहीं, चलते रहता है। और भगवान भागवत गीता के 3rd अध्याय में एक जगह बताए हैं कि व्यक्ति कर्म किए बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता। उसको जीव को कर्म करना है, एक क्षण भी नहीं रह सकता, करेगा। जातु तिष्ठते कर्म कृत, नहीं कष्ट क्षण में भी जातु तिष्ठते कर्म कृत, एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, लेकिन कैसा कर्म करना है जीव को पता नहीं। अकर्म करे कि विकर्म करे या कर्म करे। फिर दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऊपर से अपने इंद्रियों को बस में कर लेता है, इंद्रियाणि ही संयम यास्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन से उसका स्मरण करता है, इंद्रिय भोगों के स्मरण करता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। यदि इंद्रियों का जो विषय, इनको त्यागना है तो अंदर से ही त्यागना पड़ेगा, ऊपर से नहीं। ऊपर से त्यागने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उसको जैसे ही उसका संयोग होता है इंद्रिय विषय का, वो मतलब उसकी सारी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसमें लिप्त हो जाती है, उसे बच नहीं पाता है, मुक्त नहीं हो पाता है। मुक्त होने का उपाय बताया गया है इसमें, किस तरह से मुक्त होगा। मुक्त होगा वासुदेव परायण होगा, कृष्ण भक्ति करेगा तो मुक्त हो जाएगा। हम लोग जैसे जानते हैं, जान गए किसी वस्तु को, हम जान गए कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करेंगे तभी इस संसार सागर से मुक्त होंगे, तो अब उसको करना है। लेके माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उससे नहीं मुक्त हो सकते। जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, उससे मुक्ति कैसे होगी, करना पड़ेगा। हम लोग कथा सुनते हैं और आज दुनिया में देखिए चारों तरफ भागवत सप्ताह इत्यादि इत्यादि होते रहते हैं, और सभी लोग बताते हैं कि भगवान का भजन करो तो इस संसार सागर से मुक्त हो जाओगे। जानते सब लोग हैं, नहीं करता कितने लोग। जानने से करना ज्यादा श्रेष्ठकर है, इसीलिए कहा गया कि ज्ञान से ज्यादा भक्ति। भक्ति का मतलब कर रहा है व्यक्ति, प्रैक्टिकल सर्विस कर रहा है भगवान का, वो भक्ति है। और जो भक्ति करेगा उसमें ज्ञान वैराग्य सब आ जाता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चाहते, सब कुछ आ जाता है, ये करना है। तो इसमें दो चीज हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, और नारायण समझा रहे हैं कि एक तो जीव कभी मुक्त नहीं होगा जितना आसानी से हम लोग सोचते हैं, और दूसरा भगवान कभी लिप्त नहीं होते हैं। कुछ भी करें, कभी कभी देखा जाता है भगवान भी बहुत कर्म करते हैं, भगवान के तो कई का अवतार, मनुष्य तो खाली, हम लोग तो केवल मनुष्य शरीर में कर्म करते हैं ना, भगवान तो कई एक शरीर में कर्म करते हैं एक साथ। भगवान मत्स्य अवतार में आए वहां भी कर्म किए, कुर्म अवतार में आए कर्म किए, वराह अवतार में आए कर्म किए, वामन अवतार, कृष्ण अवतार, रामा अवतार, परशुराम अवतार, जितने भी भगवान के अनंत अनंत अवतार होते हैं उस समस्त अवतारों में कुछ न कुछ कर्म करते हैं भगवान, और हम लोग भी कर्म करते हैं। तो क्या हम अपने कर्मों से मुक्त हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। हम मनुष्य जो कर्म करता है वो कर्म करता है उसमें बंधते जाता है, हम जितना ही कर्म करेंगे उतना ही उसमें बनते जाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा कर्म है कि उन कर्मों के सुनने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वत, भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म, हम लोग कर्म की बात कर रहे हैं, भगवान के कर्म दिव्य हैं, और भगवान कहते हैं उस कर्म को जो व्यक्ति जानता है, उस दिव्य कर्म को, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति, शरीर त्यागने के बाद उसका दोबारा जन्म नहीं है। कहां चला जाता है? माम एति, मेरे पास चला जाता है। सिंपल, सीधा भगवान बता रहे हैं, कोई इसमें मिलावट नहीं, कंफ्यूजन नहीं, सीधा है। कोई व्यक्ति थोड़ा भी जानता होगा वो समझ जाएगा। भगवान कहते हैं कि जो मेरे कर्म को तत्व से जानता है, ठीक ठीक जानेगा, वह व्यक्ति खेल करने वाला नहीं, खेला कर रहा है, वहां जान रहे हैं, जान रहे हैं, सब जानते हैं। एक बार हम गए थे बक्सर, एक शुक्ला जी मिल गए। अरे हमको कौन सिखा सकता है, हम तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, ऐसा वैसा है। बलिया में एक प्रिंसिपल है, वो किसी कॉलेज में। तो हम लोग बैठे हुए थे, चाय पानी सब आए, तो हम लोग तो बताए कि हम लोग चाय नहीं पीते हैं। मैंने कहा कि एक तो आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन आप यदि ब्राह्मण होकर भी भगवान भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रति आपको भी रुचि नहीं है, भक्ति नहीं कर रहे हैं, चाय कभी गुटखा पान खाए जा रहे हैं, तो आप शुक्ला हो चाहे वर्मा शर्मा कुछ भी हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? हम लोग बात कर रहे थे, हमारे से और भक्त थे एक दो, तो भगवान तो ऐसे कहे नहीं है कि जो शुक्ला है उसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने तो कहा चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, ऐसा उसके गुण और कर्म से विभाजन किया जाता है। विभाजन करने का मतलब है कि बिल्कुल अलग अलग, मिलावटी थोड़ा भी नहीं है, आप चाहे कोई भी हो, लेकिन यदि आपका कर्म नहीं है, आपके अंदर गुण नहीं है, स्वभाव नहीं है, आप उसके ऊपर कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसका क्या अर्थ है? ये सिर्फ अपने मन को संतुष्ट करने के लिए है कि आप ब्राह्मण हैं, आप ऐसे हैं, सब वेद जानते हैं, पुराण जानते हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तत्व से जानने वाला व्यक्ति ही मेरे पास आएगा, खिलवाड़ करने वाला नहीं। तत्व से जो जानता है, यो वेति तत्वतः, तत्व से जानता है, वही व्यक्ति त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म, उसी का शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नैति, दोबारा जन्म नहीं है। तो यहां पर जो मुक्त होने की जो बात कही गई है, तो मुक्त कैसे होंगे? एक श्लोक है ना, कैसा है वो, मुक्तात्मा कोटि सोपी महामुने प्रशांत आत्मा, ऐसा कुछ है नहीं, कहते हैं कि उसमें कि करोड़ों करोड़ों मुक्तात्माओं में से, कैसे, सिद्धों में से भी एक व्यक्ति मुक्तात्मा मिलता है। भगवान गीता में कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्र सुवेत कसि सिद्धे, वो भागवत का श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे प्रयाग में, उसमें उन्होंने कहा है, बात बताया है कि करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से एक व्यक्ति मुक्तात्मा होता, एक आदमी। रूप शिक्षा में आप यदि पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर ढंग से बताया कि एक तो इस ब्रह्मांड को चतुर्वर्ण का, इतना बड़ा ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव है, एक दो जीव नहीं है, अनंत जीव खचाखच भरा है। इस ये प्रांगण में मंदिर का जो इतना जो जगह है, इसमें इतने दूसरे जीव हैं जितना भक्त भी नहीं है, इतने जीव हैं जिसको हम लोग देख नहीं पाते। तो पूरा सृष्टि जीवों से भरा हुआ है। आप लोग देखिए, गांव में हम लोग देखते हैं, खेतों में जो खेती में काम करते हैं, तो एक खेत में जितना चींटी निकल जाएंगी उतना आदमी उस गांव में भी नहीं होंगे, है कि नहीं? इतना चींटियां निकलती हैं, कीड़े मकोड़े निकलते, एक खेत में, एक आदमी का खेत में, ऐसे ही कह सकते हैं। कितना जीव है भरा हुआ, अनंत अनंत जीव। इन जीवों को दो भागों में बांटा गया, एक चर है और दूसरा अचर, स्थावर जंगम इत्यादि सब अचर है, बाकी चर पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि जितने भी हैं चर चलने वाले सब, उनमें 84 लाख वैरायटी है। इन 84 लाख में से मनुष्य कितना है? 4 लाख। मनुष्यों की संख्या सबसे कम है, बिल्कुल कम, 4 लाख। कम होते हुए भी लोग कहते संख्या इतना बढ़ गया है पृथ्वी के ऊपर। दूसरे जीव बहुत हैं, जल जा नव लक्षाण स्थावर लक्ष्य विंश थे। स्थावर 20 लाख हैं मनुष्य उनसे हटके, इस तरह से। अब 4 लाख मनुष्य में भी ये बांटा गया है, वर्ण है, आश्रम है इत्यादि। वर्ण में ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म किए जा रहे हैं। उसमें से कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो भगवान को प्रिय है। तो इस ब्राह्मण में भी, ब्राह्मण का सीधा अर्थ है ब्रह्म जानाती थी, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है वह व्यक्ति भगवान को प्रिय है। उस ब्राह्मण में भी जो वेदों के नियमों का पालन करता है, शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को चलाता है, वह व्यक्ति बहुत प्रिय। तो कितने लोग हैं जो भगवान का भक्ति, कितने लोग शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं? बहुत कम। आप इतने जीवों में से अगर देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं। और शास्त्रों के आधार पे अपने जीवन को चलाने वाले जीव में भी बहुत लोग अपने लिए ही कर्म करते हैं, भगवान के लिए कोई नहीं करता। अब आप लोग खुद अनुमान लगा सो, इतने लोग यहां भजन करते हैं, कम से कम 100 आदमी है, तो 100 आदमी में से कितने लोग भगवान के लिए भजन करते हैं और कितने लोग अपने लिए करते हैं? ज्यादातर से भजन करने वाला व्यक्ति भी यही सोचता है कि मैं दुखों से छूट जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊं, भगवान मुझे अपने धाम में बुला लें, मेरे पास किसी प्रकार का कर्म न रहे, नष्ट हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, सिद्धि प्राप्त कर लूं। तो मैं लगा हूं, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं सिद्धि प्राप्त कर लूं, मैं भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं, तो इसमें भगवान को क्या है? ये तो आप अपने लिए कर रहे हो। आप मुक्त होना चाहते हो, आप सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो, आप भगवत धाम जाना चाहते हो। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए? बहुत कम लोग हैं, है कि नहीं? बहुत कम लोग हैं। अब पूरे विश्व में जितने लोग हैं उसमें से भक्ति करने वाले लोग 1-2% होंगे। उन 1-2% लोगों में से भी 1-2% लोग होंगे जो ये चाहते होंगे कि मैं मुक्त हो जाऊं, चाहे भक्ति करूं, भगवान का भक्ति करूं, नाम जप करूं इत्यादि। इसमें से भी 1-2 व्यक्ति जो हैं कृष्णानुकूल, अनुकूल न कृष्णा अनुशीलनम भक्ति रुत्तम, वह भक्ति करते हैं। 1-2 व्यक्ति कोटि सोपी महामुने, करोड़ों करोड़ों में से 1 व्यक्ति जो है शुद्ध भक्ति करता है। शुद्ध भक्ति इतना आसान नहीं है। तो मुक्त कैसे होगा जीव? हम लोगों को लगता है कि भजन करने लगे तो मुक्त हो गया, लेकिन मुक्त इतना आसानी से नहीं हो जाता। मुक्ता नाम अपि सीधा नाम, ऐसा कहा गया, मुक्ता नाम अपि सीधा नाम कोटि सोपी महामुने। मुक्त आत्माओं में से कोटि कोटि मुक्त आत्मा, भगवान कहते मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् इति सिद्ध है, हजारों हजारों मनुष्यों में से 1 व्यक्ति सिद्धि की तरफ जाता है। 1000 मनुष्य चल रहे हैं तो 1 व्यक्ति सोचता है कि भगवान का भजन करना चाहिए। सब लोग नहीं सोचते हैं, सब लोग तो घर बनाने में लगे हैं, नौकरी बिजनेस व्यापार पुत्र परिवार संसारिकता में लगे हैं। 1 व्यक्ति सोचता है कि सिद्धि प्राप्त करना चाहिए, संसार में कुछ नहीं है, वो सोचता है यार यहां तो कुछ नहीं है, अब सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन यत्ता नाम अपि सिद्धा नाम, उन सब सिद्धों में से भी कोई 1 व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है और ये जानता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुतो, वो तो बहुत दुर्लभ है। 1 व्यक्ति समझ पाता है जैसे प्रभुपाद जी के जैसा व्यक्ति समझ पाया कि वासुदेवं सर्वमिति समहात्मा सुदेव। हम लोग तो ऐसे प्रचार में कभी कभी मिल जाते हैं लोग, तो अपने अपने हम बनारस में तो बहुत सारे आश्रम है ना, कितने सारे आश्रम है, लेकिन हम लोग उसे तुलना भी यदि करते हैं, तुलना करते हैं कि देखो वो आश्रम में इतने लोग जाते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अरे हमारे मंदिर में तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन वो आश्रम में तो हजारों लोग जाते हैं, तो गढ़वानंद तगड़ानंद कितना कितना आनंद है वहां पर, बहुत लोग जाते हैं। लेकिन जब आप उसको एनालाइज करेंगे, तुलना करेंगे, तो प्रभुपाद जी जैसे व्यक्ति, एक शुद्ध व्यक्ति जो अकेले पूरे विश्व में प्रचार कर दिया और किसी अन्य दूसरे का सहायता नहीं मिला, दूसरे के सहायता का मतलब है जैसे और स्वामी सन्यासी जाते हैं तो प्रचार करेंगे तो बोलेंगे राम का भी भजो, कृष्ण का भी भजो, काली का भजो, दुर्गा का भजो, प्रभुपाद जी को नहीं, केवल कृष्ण का भजन करो, क्योंकि कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है, कृष्ण का भजन करो सर्व कर्म कृत हो जाओगे। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो ऐसा नहीं बोले कि चलो भाई आप राम का भजन करते हो राम का भजन करो, आप दुर्गा का भजन करते हो तो दुर्गा का करो, आप शिव का भक्त हो तो शिव का करो, नहीं, केवल कृष्ण का करो और कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो सबका हो जाएगा। यहां तक कि राम, नरसिंह, बामन जो दूसरे अवतार भगवान का, वो भी प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी प्रश्न आता है तो क्या राम अलग है, नरसिंह अलग है, ये अलग है, नहीं अलग नहीं है, लेकिन ये बात तो जानना जरूरी है कि केशव धृता नर हरे रूपा, ये भी जानना जरूरी है, केशव धृता बामन रूपा, जो केशव हैं कृष्ण हैं वही नरसिंह हैं, वही बामन है, वही राम है। आप राम का भजन कीजिए, हमारे यहां तो श्री राम जी हैं, हम लोग तो पूजा करते हैं, यही कृष्ण है। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि जो कृष्ण है वही राम है, कृष्ण ही नरसिंह है, कृष्ण ही बामन है, कृष्ण ही अन्य अवतारों में ही, इस प्रकार से जानकर यदि भजन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात प्रभुपाद जी उन शास्त्रेषु कैसा है, मनुष्याणाम शास्त्रेषु, एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कैसे, एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जिसने अकेले कृष्ण को लेकर के किसी और देवी देवताओं का सहारा भी नहीं लिया, उन्होंने अब प्रचार कर दिया, और प्रचार भी ऐसे लोगों के मध्य में किया जो कृष्ण को चाहे किसी भी देवी देवता को नहीं जानते थे, उनके मध्य में प्रचार कर दिया उन्होंने। आज लोग अन्य देवताओं का सहारा लेके भी कुछ नहीं कर पाते, एक बीड़ी तक छोड़ा नहीं पाते हैं, चाय तक छोड़ा नहीं पाते हैं, क्या भजन करेंगे, नहीं छोड़ा पाते। तो एक जीवंत उदाहरण है प्रभुपाद जी हमारे लिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति मां में थी, उसका पुनर्जन्म नहीं थी, दोबारा जन्म नहीं है, मेरे पास आता है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए इस बात को, प्रभुपाद जी के हम लोग अनुयायी हैं, उनके चरण चिन्ह पर चलना चाहिए, रूपानुग हम लोग की जो भक्ति मार्ग में जिसमें जुड़े हुए हैं, रूप गोस्वामी मेन आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दिया ये, और हम सब लोग तो रूपानुग हैं ना, रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, तो इससे इनका अनुसरण करके अपने जीवन को उसके आधार पर चला करके और प्रयास करना चाहिए कि भगवान का कृपा हमें प्राप्त हो और मुक्त हो, भगवान का सेवा मिले। भक्त ही चाहता है कि जहां भी रहे भगवान का सेवा करें, कीट जन्म हले तुआ पद दास, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मुझे यदि कीड़े का भी जन्म मिल जाए लेकिन हे प्रभु मैं आपका दास रहना चाहता हूं, बस चतुर्मुख ब्रह्मा पदे नाही मोरायास, ब्रह्मा का पद भी अगर मुझे मिल जाए वहां भक्ति न हो तो मुझे वैसी उस पद से क्या लाभ। वृत्रासुर अपना नाम सुने, वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं हे प्रभु मैं तो स्वभाव से असुर हूं, मेरा कर्म भी असुर का है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है आपके ऊपर कि आप बहुत कृपालु हैं, तो मेरे कर्म मेरे स्वभाव के अनुसार चाहे मेरा जन्म कहीं भी हो, किसी भी जोनी में हो, लेकिन मैं आपसे ही एक प्रार्थना करता हूं कि आपके भक्तों का संगति मुझे प्राप्त, आपका भक्ति मुझे प्राप्त, क्योंकि साधु संग मिलेगा तो भगवान की भक्ति निश्चय मिलेगी। साधु संग जब होगा तो भगवान की भक्ति। तो वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं, और भागवत में बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, कुंती महारानी का, वृत्रासुर जी का, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं। सब में ही बताया कि भगवान अपनी भक्ति दीजिए। हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आप कृपा करके हमें भक्ति दीजिए, अपने चरणों में आश्रय दीजिए, ताकि हम आपका सेवा जन्म जन्मांतर तक करते रहें। राधा रस बिहारी जी बहुत कृपालु हैं, कृपा करेंगे। भगवान कहते भी हैं कि मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूं। तो भक्त वही है जार मुख कृष्ण नाम सहित वैष्णव, जो कृष्ण का नाम ले रहा है, जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वो भक्त है। हरे कृष्णा।